गल करन वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जन हूँ सयामी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। सातवां दिन, ये भी छह दिनों की तरह निकले। छह दिन जिस तरह हमने अपने जीवन की संभावनाओं को देखा है, अपनी क्षमताओं को परखा है, ऐसे ही ये सातवां दिन भी निकले। हमने शुरुआत की थी क्षमा से। क्षमा के साथ यदि कोमलता हो तो क्षमा शोभा पाती है, और कोमलता के साथ यदि सरलता हो तो कोमलता शोभा पाती है, और सरलता के साथ यदि पवित्रता हो तो सरलता शोभा पाती है, और पवित्रता जिसके जीवन में आए उसका जीवन सच्चा होता है। सच्चाई पवित्र व्यक्ति के हाथ में ही अच्छी लगती है। जिसका मन पवित्र है उसका जीवन सच्चा हो ही जाता है, और जिसने एक बार सच्चाई का स्वाद चख लिया, मानिएगा उसका जीवन संयमित हुए बिना नहीं रहे। हमने पिछले दिनों इतनी सारी अच्छाइयों को अपने जीवन में प्रकट करने की कोशिश की है। कितनी सारी संभावनाओं को हमने अपने भीतर झांक करके देखा है। सोचते थे कई लोग कि हम तो शायद एक बार का भोजन भी नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन एक बार का क्या, दोनों दोनों बार का और बार बार तक का भोजन छोड़ दिया है। क्षमता तो है हमारे भीतर। हम जिस तरह इन दिनों में जी रहे हैं, क्या हम उस तरह पूरा जीवन नहीं जी सकते हैं? कितनी संभावनाएं हमारे जीवन में, पर इन संभावनाओं को पहचानने के लिए ये दिन आए हैं। और यदि हम इन दिनों को अपनी संभावनाओं को पहचाने बिना, अपनी क्षमताओं को जाने बिना गंवा देंगे, तो ये दिन तो हमेशा आते हैं और निकल जाएंगे। एक भिखारी था, वो रास्ते के किनारे भीख मांगता रहता था, पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा, दो दो पैसे के लिए हाथ फैलाता रहा, लोगों के सामने आवाज देता रहा कि दो पैसे दे दो। लोग भी गरीब जान करके उसे पैसे दे देते थे। एक दिन वो मर गया। पूरी जिंदगी उस रास्ते के किनारे वो रहा, वहीं सोया, वहीं खाया पिया, वहीं जीवन गुजारा। जब एक दिन मर गया तो लोगों ने उसकी लाश ठिकाने लगाई और सोचा कि ये स्थान, क्योंकि जिंदगी उसकी यहीं बीती है, थोड़ा गंदा हो गया है, इसे अलग कर दिया जाए, इसका टीम टाम सब हटा दिया जाए। और जैसे ही उस जगह को साफ किया, और कुछ लोगों ने कहा कि इस जगह को थोड़ा सा खोद करके भी अलग किया जाए, क्योंकि बहुत दिन से ये यहीं गंदगी भी फैलाता था, तो उस जगह को जो खरोच करके और हटा रहे थे उसके ऊपर की मिट्टी, तो उसके नीचे निकलना शुरू हुई सोने की दीनारें। लोग चकित थे कि जिंदगी भर सोने की दीनारों पर बैठा हुआ आदमी दो दो पैसे मांगता रहा, इतना रईस व्यक्ति भिखारी बना रहा। अगर समय से पहले अपनी रईसी मालूम पड़ जाती तो शायद भिखारी बना छूट गया होता। ये धर्म हमारे उस भिखारीपने को हटाने के लिए और हमारे भीतर के आत्म वैभव को प्रकट करने के लिए आते हैं। ये दसों धर्म, जिसमें से तपस्या नाम का धर्म जो कि तप धर्म कहलाता है, उत्तम तप धर्म, वो तो हमारे भीतर की अनंत क्षमताओं को प्रकट करने वाली ऊर्जा है। जो ऊर्जा हम अपने संयम से इकट्ठी करते हैं, जो हजारों दिशाओं में हमने अपनी ऊर्जा को गंवाना शुरू किया था, संयम के माध्यम से अपने को जो समेट लिया था, उससे जो ऊर्जा संचित हुई है, वो ऊर्जा कहां लगाई जाए? वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। उससे अपना ही कंस्ट्रक्शन किया जाए, उससे अपने भीतर की जो गंदगियां हैं उनको हटाया जाए और अपने भीतर की अनंत क्षमताओं को प्रकट किया जाए, इसके लिए वो ऊर्जा संचित की है। और वो ऊर्जा ही तपस्या करने के काम आती है। संयमित जीवन, ढेर सारी क्षमताएं अपने भीतर अनायास प्रकट कर लेता है। ये हमें आज के दिन, इतने दिनों के बाद, शायद अपने अनुभव से स्वयं पहचान लेना चाहिए। आज जबकि हम तपस्या के लिए तैयार हुए हैं, हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि तपस्या कैसे करेंगे। तपस्या अगर शास्त्र और गुरु की साक्षी पूर्वक न की जाए, अपनी जिद से की जाए, और ये शो करने के लिए की जाए कि जो लोग नहीं कर पाते हैं वो मैं करूंगा, अगर ऐसी भावना से की जाए तो कहते हैं वो तपस्या तामसिक है। तीन तरह की तपस्या हो सकती है। तामसिक तपस्या है, शास्त्र और गुरु की साक्षी के बिना, क्योंकि शास्त्र हमें बताते हैं कि कहां हम चूक सकते हैं और गुरु हमें सहारा देते हैं, कोई बात नहीं, चूक गए, डोंट वरी, आई एम विद यू, चलो चलो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए लिखने वालों ने लिखा, आचार्य भगवंतों ने लिखा कि शास्त्र और गुरु की आज्ञा से, शास्त्र और गुरु की साक्षी पूर्वक, उनकी श्रद्धा से जो तपस्या की जाएगी वही तपस्या ठीक मानी जाएगी, वरना तपस्या तामसिक कहलाएगी। दूसरी बात, किसी मान सम्मान और सत्कार की भावना से अगर तपस्या की जाती है तो वो तपस्या राजसिक कहलाती है। तीसरे प्रकार की तपस्या ही सात्विक तपस्या है, जो गुरु और शास्त्र की साक्षी पूर्वक, क्योंकि मां जानती है, जैसे मां जानती है कि बेटे को क्या देना है। छोटा वाला बेटा तो जिद करता है कि वो जो बड़े वाले बेटे को तुमने रसगुल्ला दिया है वही हम भी लेंगे। अब उसको तो नहीं पानी मिला हुआ दूध नहीं पच रहा है और मांग रहा है मसाला मलाई वाला रसगुल्ला, तो गड़बड़ है, इसे कैसे दे सकते हैं? देना तो है लेकिन इसे थोड़ा मजबूत बना दे, फिर मलाई वाला देंगे। मां उसका अहित नहीं चाहती है, गुरु किसी का अहित नहीं चाहते, पर एक क्रम देते हैं, वे बताते हैं कि तपस्या भी करना तो कैसे करना, क्रम क्रम से तपस्या को अंगीकार करना ताकि तुम्हारी क्षमताएं अपने आप बढ़ती चली जाएं, और जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे जीवन तपस्या की ओर अपने आप अग्रसित होता चला जाएगा। इसलिए शास्त्र और गुरु के द्वारा बताई गई विधि के द्वारा ही जो तपस्या की जाती, शास्त्र नक्शे की तरह है भैया और गुरु मां की तरह है, जो संभालते हैं कि इसे अभी तो पानी मिला दूध देना है और इसे मलाई का रसगुल्ला खिलाना है। मुझे घटना याद आती है, मैं तो छोटी छोटी घटनाएं बताऊंगा आपको अपने जीवन की। नैनागिर में मैं पहले जाया करता था 77-78 में, जब मैंने आचार्य ऋषि के चरणों में अपने को समर्पित नहीं किया था। तब कुल तीन साधु थे, नियम योग सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, और मुनि दीक्षाएं तो मेरे सामने ही सनस्सी में हुई। उसके पहले कोई मुनि नहीं था, आचार्य ऋषि भर थे मुनि में, तो बाकी सब शुल्लक और रेलक थे। तो हमेशा का एक क्रम था कि समय सागर जी महाराज अष्टमी चतुर्दशी को उपास करा करते थे, पर एक दिन पहले लेना पड़ता है उपास। कल अष्टमी है तो सप्तमी के प्रत्याख्यान करने के बाद उपास ले लेते हैं गुरु की साक्षी पूर्वक, उनसे आदेश लेके, आज्ञा लेकर कि मैं उपवास कल करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा है क्या? मैं अपनी जिद से नहीं करना चाह रहा हूं, मैंने ऐसा सोचा है ऐसा भी नहीं, अगर आपकी आज्ञा होगी तो। ये शास्त्र और गुरु की विनय के पूर्वक, और जो अहंकार वश ले लेता है उसको हम तपस्या में शामिल तो करते हैं, पर वो राजसिक और तामसिक तपस्या कहलाती, वो तो अपन ने कई बार करी है ऐसी तपस्या। तो समय सागर जी महाराज ने आचार्य ऋषि से निवेदन किया कि कल अष्टमी है, मैं उपवास की आज्ञा हो तो कर लू, नहीं उनोदर कर लो। उनोदर भी एक तप है, अपनी भोजन की इच्छा से कम भोजन खाना, उनोदर उपवास से ज्यादा कठिन तप है, और उनोदर से ज्यादा कठिन वृत्ति परिसंख्यान है, वृत्ति परिसंख्यान से ज्यादा कठिन रस परित्याग है, रस परित्याग से ज्यादा कठिन विविक्त संयासन है, विविक्त संयासन से ज्यादा कठिन कायोत्सर्ग में पूरे दिन भर गुजार देना, वो और ज्यादा कठिन है। इसलिए क्रम क्रम से तप कठिन है, उपवास बहुत आसान सी चीज है। तो कहा कि तुम उनोदर तप करो। उनोदर तप भी दो तरह का होता है, अंजलि फैलाई, जो पहला ग्रास दे दिया वही ग्रहण किया और वापिस लौट आए, एक ग्रास ग्रहण करना। पूरी तेजी पर है क्षुधा वेदनी, शुद्धि करके गए हैं, मन पूरा बना के गए हैं, भोजन करना है, और बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि गर्म तवे पर एक बूंद डाली तो ऐसा मामला होता है। ये हम लोगों को पहले तपस्या कराई गई सन 81-82-80 में, इन तपस्याओं से गुजरने के बाद ही बहुत परीक्षा के बाद मुनि दीक्षा दी जाती है। आसान नहीं है, पता नहीं कब कौन सी स्थिति आ जाएगी जीवन के अंत में, और भोजन की आकांक्षा होते हुए भी अगर भोजन शरीर ग्रहण नहीं कर रहा है तो उपवास कर सको, इसलिए साधना कर लो। एक अंजलि अकेला ले पाए हैं और उसी समय लगा कि अब तो प्राण निकलने को है तो छोड़ दिया, ये कब सीखोगे? ये पूरे जीवन सीखना पड़ेगा। हर तरह की स्थिति गुजर सकती, हो सकता है एक ग्रास ग्रहण किया और अंतराय आ जाए, क्या कर लोगे आप? इसलिए अपने आप पहले ये साधना करके देख लो ना, ताकि फिर संक्लेश ना हो, ताकि मन में कोई आकुलता ना हो, क्योंकि तपस्या सारी निराकुल होने के लिए। तो उनसे कह दिया कि उनोदर तप कर लो। और एक उनोदर तप मैं आपसे कह रहा था, वो भी होता है जबकि पूरा भोजन तो कर लिया, सोचते थे कि एक अंजलि एक ग्रास और ले लेंगे तो जरा शक्ति हो जाएगी, वो एक ग्रास छोड़ दिया, बस पूरा भोजन कर लिया है लेकिन अतृप्ति है, एक ग्रास और लेंगे तो पूरा होगा। आप जीवन में अनुभव करते होंगे कि बस ये थोड़ा सा और खा लें तो फिर हाँ पेट भरा हुआ, जबकि भर गया है पूरा, पर वो एक थोड़ा सा और खा लेंगे तो पेट भरा हुआ लगेगा, वो एक ग्रास छोड़ दिया। ये जघन उनोदर है, लेकिन ये भी उनोदर तप है। अपनी आकांक्षा को 1% भी आपने कम किया है या 99% कम किया है, दोनों उनोदर तप है। उनको उनोदर तप दे दिया, वे हमेशा उपवास करते थे। बाकी महाराज जी को लगा कि आज तो आचार्य ऋषि उपवास दे नहीं रहे हैं, तो उपवास काय को मांगो इनसे, अब जब वो दे ही नहीं रहे हैं तो नियम सागर जी महाराज हमेशा उनोदर करा करते थे। तो जैसे उनका नंबर आया, उन्होंने कहा कि मैं उनोदर कर लूं, तुम उपवास कर लो। उस क्षण तो मैं नहीं समझ पाया बात को, मैंने आचार्य ऋषि से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? जिनके उपवास करने की भावना थी, बिल्कुल आहार लेने की भावना नहीं थी, उनको आपने कहा कि लेकर के आओ, और जिनके थोड़े से आहार लेने की इच्छा थी कि थोड़ा सा ले लूंगा, उनके लिए आपने पूरे आहार का त्याग करवा दिया। दोनों चीज एक साथ हैं कि मां जानती है, आचार्य जानते हैं कि इसे सारी तपस्याओं में निष्णात करना है, किसी एक तपस्या में निष्णात होने से नहीं चलेगा, क्षणों तप इसके लिए आसान हो जाए। इसलिए शास्त्र और गुरु की साक्षी पूर्वक, क्योंकि शास्त्र हमें बता सकते हैं, भगवान तो बोलते नहीं, भगवान के सामने जाके कह भी दो कि आज हमने ऐसा ऐसा सोचा है, वो कहेंगे ठीक अच्छा सोचा, शास्त्र में से पढ़ लो कि ऐसा ऐसा विधान है, ऐसा ऐसा किया जाता है, ठीक है कर लो, पर सहारा कौन देगा, कौन गुड विशेष देगा, कौन कहेगा कि डोंट वरी आई एम विद यू, डरना मत मैं साथ में हूं, मैं इस तपस्या से गुजर चुका हूं जिस तपस्या से तुम गुजर रहे हो, मैं संभाल लूंगा, अगर कहीं तुम थोड़ा सा चूक जाओगे तो मैं संभाल लूंगा, और पूरे गिर जाओगे तब भी कोई कुछ नहीं कहने वाला, कल फिर करेंगे अपन, गिर गए कोई बात नहीं, जो चलता है वही ना गिरता है, बैठा बैठा आदमी कहे कि मैं तो कभी गिरा ही नहीं, वो तो कह सकता है, चलने वाला तो प्रतिक्षण प्रतिक्षण गिरने के लिए मजबूर है चलने वाला, इसलिए कोई संभालने वाला भी चाहिए। तब कहते हैं कि जो शास्त्र विधि के अनुसार और गुरु की साक्षी पूर्वक तप किया जाता है वही तप सात्विक कहलाता है, और बहुत सोच विचार में पढ़ करके तप नहीं करना, बहुत सोच सोच के नहीं किया जा सकता, श्रद्धा से किया जाता, और श्रद्धा में सोच वोच बांध बूंद करके किसी के चरणों में डाल दिया जाता है कि मैं नहीं सोचूंगा, सोच चुका पूरी जिंदगी, पाप करने के लिए सोचना, धर्म करने के लिए क्या सोचना, बस करना, और करना तो किसी के चरणों में अपने उस मन और बुद्धि को डाल करके करना। ज्यादा समझदारी कई बार हमको मुश्किल में डाल देती है, भैया चलने के लिए कितना सोचना, इतने कि चलना है कि नहीं चलना बस, और क्या, अब रास्ता तो आप जानते नहीं है कि इस रास्ते पर कभी चल के देखा हो तो मालूम पड़े कि कैसा रास्ता है, जो चले हैं उन्हीं के चरणों में बैठ करके ना शुरू करना पड़ेगा, इसलिए खुद ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो चल रहे हैं उनके कदमों में बैठ जाइएगा, उनसे थोड़ी सी डायरेक्शन ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ज्यादा समझदारी तपस्या और संयम में बहुत बाधक होती, और हम पूछते भी किससे हैं, जिसने कभी तप नहीं किया उससे पूछते हैं, वो हमें समझाता है कि तप ने क्या रखा है, जो जिसने कभी जीवन में संयम का स्वाद नहीं लिया उससे हम पूछने जाते हैं कि मैं संयम ले लूं कि नहीं ले लूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, जिसने कभी जिंदगी उपास नहीं किया हो उस आदमी से कहो कि मैं उपास कर लूं क्या, वो कहेगा हमने नहीं किया तुम क्या करोगे, अगर तुम कर लोगे तो हमसे आगे नहीं बढ़ जाओगे, तब तो बहुत मुश्किल होगी। इस और ग्रॉस रेजनलाइजेशन कहलाता है लोमड़ी के अंगूर खट्टे, जब जो चीज जिसको नहीं मिल पाती वो उसकी निंदा करता है कि ये मिल ही नहीं सकती आज वर्तमान में, आज कोई मुनि होता तो हम नहीं हो जाते क्या, मुनि हो ही नहीं सकता कोई, हमें पहले मालूम था इसलिए तो हमें नहीं, कितना आसान है कहना। सौ ग्रास रेजनलाइजेशन ये कहलाती साइकोलॉजी में कि जब लोमड़ी गई थी अपनी सहेलियों से कह के कि अंगूर खाने जा रहे हैं, और जब वापस भूखी लौटी थी तब सहेलियों ने कहा कि क्यों अंगूर मिले, कहना सब बेकार बाहियात खट्टे कोई काम के नहीं, जबकि वहां अगर देखते तो बहुत कोशिश करी तू उछल कूद की, गिरे 17 बार लगी, जवाब ऑफिस लौट के आए और कह रहे थे कछू नहीं है ही नहीं खट्टे हूं, खुद नहीं बनता है तब हम उस चीज को रिफ्यूज कर देते हैं कि वो काम की चीज नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से नहीं पूछना जो तपस्या और संयम से न गुजरा हो, किसी संयमी और तपस्वी व्यक्ति से पूछना कि क्या मैं तपस्या कर सकता हूं, और इसमें अपनी समझदारी ज्यादा मत लगाना। मुझे समझदारी की बात जब आती है तब एक ध्यान आ जाता, मैंने शायद ऊपर बैठे कभी सुनाया था, थोड़े लोगों को सुनाया था, शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना हो, या पहले महाराज जी वगैरह ने सुनाया हो आपको, फिर से सुन लीजिए, है बहुत मजेदार चीज। एक व्यक्ति बहुत समझदार था और हर चीज सोच समझ के किया करता था, तो एक बार जो है उसको सेना में भर्ती कर दिया गया, उस सेना में भर्ती हुआ बहुत सोच के काम करता था, जब उन्होंने आदेश दिया कमांडर ने कि बाएं मुड़ो तो वो खड़ा रहा, बाकी पूरी फौज बाएं मुड़ गई, उसके पास जाके कमांडर ने कहा कि तुम बाएं क्यों नहीं मुड़े, बोले मैं सोच रहा था कि बाएं मुड़ने का मकसद क्या है, अगर मुड़ूंगा तो उसके बेनिफिट्स क्या है, मैं मुड़ने को तो बिल्कुल तैयार हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाएं मुड़ना झट से मुड़ जाता हूं, लेकिन मैं पहले सोचूंगा कि बाएं मुड़ने का उद्देश्य क्या है, बाएं मुड़ने से लाभ क्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम नहीं, निकलो यहां से बाहर, उसको बाहर निकाल दिया। अब उसका जो मित्र था जो उसको लेके आया था उसने कहा कि इसको कुछ तो मिलना चाहिए काम, तो बोले साहब कृपा करके कुछ काम दे दो, बोले ले जाओ इसको शायद मैं इसमें कुछ काम करे, जो रसोई घर है उसमें कुछ काम मिल जाए, तो रसोई घर में ले गया उसको, तो सोचा कि बुद्धिमान तो है और थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान हो गया, आपच अपच हो जाता कई बार तो बुद्धि का भी बहुत मुश्किल है, बाकी चीज का अपच हो जाए तो एक टैबलेट है, लेकिन बुद्धि का अपच हो जाए तो एक ही टैबलेट है, श्रद्धा की टैबलेट, श्रद्धा की टैबलेट बुद्धि के अपच को दूर कर देती है। तो जाकर के और उसको कहा कि ऐसा करो कि ये मटर फली रखी हुई है, इनको छीलना तुम, और ऐसा करना जो बड़ी बड़ी मटर है उनको एक तरफ रख देना, जो छोटे छोटे मटर है उनको एक तरफ रख देना, बस इतना सा काम है, इसमें क्या है। तो उसने कहा ठीक हो जाएगा, वो बैठ गया। वो घंटे भर बाद जब कमांडर लौट के आए तो मटर फली ज्यों की त्यों रखी, जनाब ने शुरू नहीं किया। बोले भाई शुरू करो, तुमने अभी तक छीली नहीं। बोले साहब मैं ये सोच रहा था कि बड़ी वाली तो इस तरफ रखूंगा और छोटी इस तरफ रखूंगा, लेकिन जो मझोल वाली है वो कहां रखूंगा, पहले ये डिसाइड हो जाना, पहले जो जो बीच वाली होंगी उनको कहां रखूं ये डिसाइड हो जाए, तब तो शुरू करें, नहीं तो शुरू कर लिया और फिर बाद में बीच वाली का हाथ में थोड़ी रखी। इतनी ज्यादा समझदारी की आवश्यकता नहीं तपस्या के लिए, किसी के चरणों में अपने को समर्पित करने पर ही तपस्या शुरू होती है। और तपस्या तीन तरह की होती है, बहुत आसान सी चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है। एक तो शरीर की तपस्या है, एक वाणी की तपस्या है और एक मन की तपस्या है। हमको बहुत प्रैक्टिकेबल है, बिल्कुल घबराने जैसी चीज नहीं। मैंने आपको उपवास की बात कही, सबको मालूम है उपवास, उनोदर की बात कही, थोड़ा सा कम खा लिया हो गया, कई बार खा लेते हैं कम, पर तपस्या की तरह कम खा करके देखना। कभी कभी वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान सिर्फ मुनि महाराज जी करते हैं ऐसा नहीं समझना, वृत्ति परिसंख्यान हम भी आप भी कर सकते हैं। 10 चीजें थाली पर आई हैं, ठीक है 10 चीजें, आज तो 2 अलग कर दो भाई, ऐसी भी अलग कर दो जो मन की नहीं है, चलो ऐसे ही सही, जो आपको नहीं रुचती है वो थाली में आई है, 2 अलग कर दो कम से कम, 8 से ही काम चला लूंगा। और किसी दिन अगर हिम्मत पड़े तो जो सबसे ज्यादा रुचिकर है उसको धीरे से अलग कर दिया, बाकी के साथ खा लूंगा। वृत्ति परिसंख्यान, अपने भोजन की वृत्ति को सीमित करना सबसे बड़ा वृत्ति परिसंख्यान है। अकेले मोहल्ले की वृत्ति वृत्ति परिसंख्यान नहीं कहलाता, दाता की वृत्ति भी है, पात्र की वृत्ति भी है। लोग बड़ी गड़बड़ी में पड़ जाते हैं, मुनि महाराज जी एक प्रकार की वृत्ति से नहीं चलते, 4 प्रकार की वृत्ति होती, किस मोहल्ले में जाऊंगा, किस डायरेक्शन में जाऊंगा, आज अपने बाएं तरफ मुड़ूंगा या आज अपने दाएं तरफ मुड़ूंगा, हो गया खत्म, बस इतना ही पर्याप्त है। मोहल्ले की वृत्ति, कितने लोग खड़े होंगे पड़गाने के लिए, 5 होंगे, 7 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, चाहे जितने होंगे चले जाऊंगा, पहले चौके को छोड़ के दूसरे में चले जाऊंगा, दूसरे को छोड़ के तीसरे में चले जाऊंगा। दाता की वृत्ति, भीतर जाकर के देखूंगा कि स्टील के बर्तन में है कि चांदी के बर्तन में कि सोने के, आज तो सोने के बर्तन में लेऊंगा, जो चीज रखी होगी वो ही लेऊंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लेऊंगा और वापस चले जाऊंगा। बहुत कठिन है ये काम, पर ऐसी वृत्ति ली जाती है, ये पात्र की वृत्ति कहलाती है। ये तीनों वृत्ति बाहर दिखने वाली है, चौथी वृत्ति है भोजन की वृत्ति, चाहे जितनी चीजें हों, मुझे तो 1, 2, 3, 4, 5 5 ही चीजें लेना है। बंबई वाले एक व्यक्ति आए हैं, लोग बता रहे हैं कि वो सिर्फ 8 चीजें लेते हैं, अगर आपने शक्कर डाल दी है दूध में तो 2 चीजें हो गई, बस 5 चीजें 7 चीजें लेनी है, भोजन की वृत्ति होगी। कितना आसान है, हम भोजन की वृत्ति कर सकते हैं, वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप कर सकते हैं, लेकिन हमने तप को बहुत हवा जैसा बना लिया। नहीं, ये शरीर का तप भी है, ये वाणी का तप भी है और मन का भी तप है। शरीर का तप है देव गुरु शास्त्र के प्रति विनय प्रकट करना, झुकना, इसका नाम है। जहां जहां देवत्व दिखाई पड़े वहां वहां झुक जाना, वहां वहां सम्मान करना, जहां कोई गुरु दिखाई पड़े वहां पर उसके प्रति विनय प्रकट करना, शरीर का तप है। आज तो शरीर का तप भी नहीं कर पा रहे हैं, माथा झुकाने में बहुत तकलीफ होती कि गर्दन इतनी अकड़ गई है कि टूट ना जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए, शरीर का तप ही खो गया। और शरीर का दूसरा तप है शरीर से अनाशक्त होना, ये शरीर का तप है। थोड़ी देर के लिए सही, कितनी देर के लिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा उतनी देर के लिए मैं कायोत्सर करता हूं, मैं अपने शरीर के ममत्व को त्यागता हूं और 9 बार भगवान का स्मरण करता हूं, हो गया आपका शरीर का तप, हो गया। कायोत्सर्ग नाम का तप है, पूरे दिन दिन भर करो, 9 बार नमोकार से शुरू होता पूरे दिन भर कायोत्सर्ग की प्रक्रिया, वो तप मुनि महाराज करते हैं, आप इतना ही कर सकते हैं। अभी ग्राहक जो है दुकान पर आया नहीं है और कोई भी नहीं है खाली, 9 बार नमोकार कर लेते हैं फट से, जो है 9 बार नमोकार, शरीर का त्याग। अभी कोई खाना खाने आया नहीं है, कहां तक रोटी बनाए, थोड़ा ठहरो गरम गरम बना देंगे, जब आएंगे आते दिखेंगे, अभी तो एक एक सामायिक कर लें, एक कायोत्सर्ग कर लें, बहुत आसान है। बहुत सारा प्रपंच फैल गया है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, क्या करें, अब जल्दी से जो है अपन नौ वार नमो कर लेते हैं, फिर सबको निपटाते हैं। दुनिया भर की व्यर्थ की बातें होना शुरू हो जाएं उसी समय कायोत्सर्ग। मैं इन व्यर्थ की बातों से कैसे बचूं, अपने शरीर को बचाऊं, मैंने कायोत्सर्ग शुरू कर दिया। तपस्या बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हमने कठिन बना ली है। बाह्य तप तो आसान है ही, अंतरंग तप भी आसान है, वही वाणी का तप है। वाणी का तप क्या है? कहते हैं सूत्र वचन बोलना, आगम की बात बोलना, अनुवीची भाषणम। जो आगम सम्मत वचन नहीं है उनको नहीं बोलना, जिससे दूसरे का अहित होता हो वैसे वचन नहीं बोलना, यही वाणी का तप है। और मन का तप अपने मन को हमेशा गंदा होने से बचाना, अपने भावों को हमेशा निर्मल बनाने की कोशिश करना। बस इतना ही, सैकड़ों मौके आएंगे, हजारों मौके आएंगे जबकि हमारा मन विकृत होना चाहेगा, कर्म के संस्कार की वजह से विकृत होना चाहेगा, लेकिन कहते हैं कि नहीं, कर्म कितने भी उदय में आए मैं अपने मन को अपने भावों को नहीं बिगाड़ूंगा। कोई मुझे कितनी भी गाली दे दे, आज तो मेरा मन है कि 10 मिनट बाद जवाब देऊंगा, मैं अपने मन को जरा भी गंदा। कहते ना कि भैया इनसे कितने कछु कह लो, इनको पानी नहीं हिलत भीतर, इतना धैर्य है, इतनी समता है, यही तप है। ये मन का तप है, मन को कलुषित नहीं होने देना। इच्छाएं मन को कलुषित करती हैं, इसलिए शायद लिखा है कि अगर इच्छाओं का निरोध कर दिया तो हमारा मन का तप हो गया। शुरुआत उसी मन के तप से होती है, लेकिन शरीर का तप भी बहुत जरूरी है। शरीर से झुकना, सच्चे देवगुरु शास्त्र जहां पर भी हैं वहां पर झुकना और अपने शरीर के प्रति अनाशक्त रहना, वाणी हितकर बोलना और मन में विकार नहीं आने देना, यही तीनों तप हैं। इच्छाओं का निरोध करना। कभी आपने पुष्पलाल और बारी सेन की कहानी सुनी है? कितनी बढ़िया कहानी है। दोनों जन मुनि महाराज बन गए थे, लेकिन इच्छाएं शेष रह गई थी पुष्पलाल के मन में। बारी सेन तो सच्चे मुनि बन गए थे, लेकिन पुष्पलाल के मन में इच्छाएं रह गई थी। उनको बार बार अपने घर गृहस्थी की याद आ जाया करती थी। तब क्या करें, आ जाती है तो भगा दें घर? नहीं, ठहरो। 12 साल तक देखते रहे बारी सेन कि मेरा मित्र अभी भी थोड़ा सा मन इसका घर में अटका हुआ है, क्या करूं, कैसे इसका स्थितिकरण करूं। उपगुहन तो खूब करते थे, कभी किसी से नहीं कहा, मालूम भी पड़ गया तब भी किसी से नहीं कहा। जो विद्वान अविद्वान दूसरे के दोषों को नहीं करता है वही सम्यक दृष्टि है। अविद्वान दोषों को तो कहना नहीं, विद्वान दोषों तक को नहीं कहता है वो सम्यक दृष्टि है। और प्रयास निरंतर करता है लेकिन कि कैसे वो दोष निकल जाए, ये इतनी तपस्या करने वाला और उसमें ये भूल चूक से कहां से गलती आ गई, कैसा करूं कि निकल जाए। तो बारी सेन हमेशा कोशिश में रहते थे कि पुष्पलाल के मन की वो जो थोड़ी सी इच्छा है वो निकल जाए। एक दिन बोले कि पुष्पलाल, मेरा मन है कि अपने गृह नगर में चला जाए, जहां हमारा घर था। पुष्पलाल के मन आंख में चमक आ गई कि हां, एक बार घर देख लूंगा, एक बार कैसे हैं सब लोग, ठीक रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे, क्या करते होंगे मेरे जाने के बाद, ऐसा मन में लगता था उनके। उन्होंने शादी की थी, उनको बार बार याद आ जाती थी कि जिसको मैं छोड़ करके आया हूं उसका जीवन कैसा बीत रहा होगा। बट नेचुरल संभव है ऐसा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों आ रहा है मन में। बारी सेन महाराज सोचते थे कि बहुत 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 तपस्या चाहिए इसके लिए, और एक दिन लेकर के गए और अपने ही घर लेकर के गए, और घर जाकर के मां को आवाज दी कि मां हम आए हैं। मां तो एक बार चौंकी कि मेरा जाया बेटा और घर वापस लौट आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मां को विश्वास था, मां ने कहा कि अभी परीक्षा हो जाएगी, और 2 चौकियां लगाई, आओ बेटे, मित्र भी है तुम्हारे साथ, दोनों मुनि हैं। और दोनों को भीतर प्रवेश कराया और एक सोने की आसन लगाई और एक लकड़ी का आसन लगाया। बारी सेन समझ गए कि मां परीक्षा करने को है। बारी सेन ने कहा, पुष्प डाल, ग्रहण करो आसन, और पुष्प डाल ले। आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सोने के आसन पर बैठ गए और बारी सेन ज्यों के त्यों अपने कास्ट के आसन पर बैठ गए। जैसे ही बारी से कास्ट के आसन पर बैठे, मां निश्चिंत हो गई कि बेटा बिगड़ा नहीं है, बेटा साधु है। तो बात कोई ना कोई है, बेटे कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मां, एक बार जिन कन्याओं को मैं छोड़ करके गया था उन सबको पूरे श्रृंगार के साथ मेरे सामने लाओ, मैं देखना चाहता। अब मां फिर चौंकी कि क्या इच्छा जागृत हो गई वारी सेंड के मन में। जितनी उन्होंने कन्याएं जिनसे विवाह किया था, जिनको छोड़ के चले गए थे, उन सबको श्रृंगार के साथ एक एक करके लाया गया। उन्होंने प्रणाम करके पुष्पलाल को भी प्रणाम किया और निकलती चली गई। और इससे पहले की संख्या पूरी हो, धीरे से पुष्पलाल से बोले कि पुष्पलाल चाहो तो ये पूरी संपत्ति, ये वैभव और जिन कन्याओं को मैंने छोड़ा वो तुम्हारी हो सकती हैं, मैं जाता हूं तुम यहीं रहो। 12 वर्ष तक जो बात मन में डोलती रही एक क्षण में कैसे निकल गई। पुष्पलाल भी उठ के खड़े हो गए कि तुमने मुझे ठीक पहचान लिया, मैं तो एक अपनी आंख फूटी हुई जीवन साथी को छोड़ के गया था, उसमें अटका रहा, इतनी सारी तुम छोड़ के गए थे, तुम जरा भी नहीं अटके, अब मुझे फिर से दीक्षित करो, मैं फिर से दीक्षा लेके अब सच्चा तप करूंगा, अपनी इच्छाओं का निरोध करने वाला तप करूंगा। इच्छाएं मन में डोल जाती हैं, तपस्वी के मन में भी डोल सकती हैं, लेकिन तपस्या तो वो ही है जो कि इच्छाओं को जीत ले। इच्छाएं रोज रोज होंगी, नई नई इच्छाएं होंगी, जो संस्कार हैं वो कहां जाएंगे, कि बताते नहीं कि कहां जा रहे हैं, हम लोगों तक को नहीं, जो साथ में हम तो उनको नहीं बताते कि आज कहां रुकेंगे, शाम तो नहीं बताया। हम लोग चले, चलते चलते जो है 10-15-20 किलोमीटर चल गए, कोई स्थान ही नहीं समझ में आया, और एक जगह जो है गड़बड़ सड़बड़ बता दिया, तो हम लोग जो है 9 किलोमीटर और ज्यादा चलना पड़ा, और जिस स्थान पर पहुंचना था पहुंच तो गए अंबाड़ा, लेकिन अंबाड़ा से 1 किलोमीटर पहले ही और अंधेरा हो गया। आचार्य जी ने कहा आप नहीं पहुंचेंगे, 1 किलोमीटर है अंबाड़ा, आप नहीं जाएंगे वहां तक। 27 किलोमीटर चल चुके हैं, 1 बजे से निकले, शाम होते होते तक, और वहीं रुकने का इंतजाम करना है। तो एक खेत था, उस खेत में ज्वार के सिट्टे पड़े हुए थे, और वो एक ज्वार का ही सिट्टों का एक एक बेस जैसा, एक प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया था, और चारों तरफ से भी सिट्टे लगे थे, उसमें वो अपना खलिहान वगैरह रखते होंगे, वो सब खाली पड़ा था। तो आचार्य ने कहा इसमें रुक सकते हैं क्या? बोले हाँ इसमें रुक सकते हैं, पर उस समय ध्यान नहीं दिया कि ये सिट्टे जो है वो रात भर गड़ सकते हैं, उनमें जो फांसे रहती हैं वो गड़ेंगी, ऊपर से तो वो निकल गया, जो ऊपर ज्वार का जो होता है ना फल वो तो निकाल लिया, उसका जो पीछे की लकड़ी जो बाड़ा अपन बोलते हैं वो बची, उसके बने थे वो, जाकर के सब लोग बैठ गए, प्रतिक्रमण वगैरह कर लिया। मैं तो छुलक था उस समय, तो चद्दर वद्दर था अपना, पर थोड़ा सा लगा कि देखो अपन तो चद्दर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इसको हटा करके फिर देखें कि कैसा लगता होगा नीचे। तो बहुत चुभता था, आचार्य तो वैसे ही बैठे हुए हैं उस पर, उनको नहीं चुभता होगा, अपन भी नहीं लेंगे आज चद्दर, ऐसा सोच लिया। सोचा था कि चटाई वटाई आ जाएगी, अभी ये सब लोग इंतजाम कर लेंगे, पर चटाई तो पता नहीं कहां रखी, आई नहीं चटाई, बस वही सिट्टे हैं। रात 9 बजे लोगों को मालूम पड़ा कि महाराज जी वगैरह का संग यहां आकर के रुक गया है, आंगन फांगन जो जितनी व्यवस्था बनी इधर उधर से लोगों ने व्यवस्था करी, लेकिन कहां तक करिएगा, ठंड का मौसम, दिसंबर का मौसम था, और मच्छर तो बहुत थे, नीचे भी हल्का सा पानी भरा हुआ था उस खेत में, और मच्छर अलग काटना शुरू हुए, और ठंड पड़ना धीरे धीरे बरसना शुरू हुई ठंड, और रात बढ़ती चली जाती थी, लेट सकते नहीं थे क्योंकि गड़ता बहुत था, जैसे तैसे करके 12-1 बजे पर थोड़ा सा हम लोगों का पहले एक डिसिप्लिन था कि जब तक आचार्य विश्राम नहीं करेंगे तब तक कोई साधु संघ का, थोड़े से साधु तो 10-11 साधु थे, तो हम लोगों ने अपने मन में ही सोच लिया था कि जब आचार्य के साथ ही सोते थे तो आचार्य जब लेट जाएंगे तो हम लोग लेटेंगे। तो आचार्य जैसे ही एक करवट से लेटे, हम लोग ने भी धीरे धीरे लेटना शुरू किया, और जैसे ही हम सब लोग लेटे तो लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, कुछ ओढ़ने के लिए तो है नहीं, तो वो जो सिट्टे रखे हुए थे ऊपर से डालना शुरू करते। उनको तो सेवा, उनका मन ऐसा नहीं था कि इनको तकलीफ होगी, लेकिन उनने सेवा करी, उन्होंने सिट्टे डालना शुरू किए और पूरे में बिछा दिए, एकदम तोप दिया कि अब ठंडने लगेगी महाराज जी को। अब तो मुश्किल ये हो गई कि हाथ भी ऐसा नहीं कर सकते, अब ऊपर से छिल जाता था अगर हाथ ऐसा करेंगे, जैसे थे वैसे ही लेटे रहे। सुबह की सामायिक कोई ने बैठ के नहीं करी भैया, लेटे लेटे, क्योंकि उठे नहीं सकते, ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है। ऐसा मजा का क्षण था उस समय, सनस्सी की बात है। तो हम लोग को तो बहुत भीतर भीतर लग रहा था कि सुबह सुबह जब आएंगे शावक तो उनको अच्छी डांट वांट लगाएंगे कि ये क्या मामला है। पर देखा कि सुबह जब सिट्टी हटाए लोगों ने तो आचर्षि की मुस्कुराहट ज्यों की त्यों थी, कहीं कोई मन पर कहीं कोई भावों में जरा भी कलुषता नहीं आने दी उन्होंने। श्रावकों के प्रति जरा भी उनके मन में आक्रोश नहीं था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि खुश थे वे। अब उनकी खुशी देखकर हम लोग तो सहम गए, न कोई अपन भी कुछ मत कहो, महाराज जी कुछ नहीं कह रहे तो अपन काय को, जब इतने बड़े महाराज जी कुछ नहीं कह रहे तो अपन कहां लगते हैं। तो चुपचाप जो है उठे और उनके पीछे भक्ति भक्ति करके और वो चले आगे। सूरज की किरणें आईं और जब सूरज की किरणों ने उन सब को छुआ, आचर्षि तो एकदम फेयर कलर है तो एकदम स्क्रैचेस पूरे शरीर में स्क्रैचेस, और वो उनसे खून झलकता हुआ, और सूर्य की किरणें जब पड़ना शुरू हुई तो हम लोगों को एहसास हुआ कि जब हमको जलन हो रही तो उनको कितनी हो रही, उनका तो बहुत सॉफ्ट है शरीर, तो सब कुछ हो रहा है। उसके बाद वो जान रहे हैं कि इनके मन में क्या है, जान जाता है जो जितनी तपस्या वाला होगा, जितना संवेदनशील होगा वो जान जाएगा। और वे जान गए कि इन सबको तकलीफ हो रही है। बोले क्यों, कैसा लगा, रात बहुत अच्छी गुजरी? तो हम लोगों ने कहा कि अब क्या कहें, अब आप भी हंस रहे, हम लोग भी हंसे कि हाँ बहुत अच्छी गुजरी। बोले देखो उनकी बात देखना, देखो मन को खराब नहीं करना, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, देखो कर्म निद्रा का ऐसा मौका कभी आ सकता है? ये कर्मों की निद्रा का मौका आया था, श्रावक ने हम पर उपकार करके हमको कर्मों की निद्रा करने के लिए ये मौका दिया था, अब अगर हम अपने मन को कलुषित कर लेंगे तो और नए कर्म बांध लेंगे, और अगर समता भाव से इस उपसर्ग को या परिचय को सहन करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, यही तो तपस्या है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मैंने कोई उदाहरण वैसा नहीं सुनाया जो आज संभव नहीं है। मुझे तो जब जब याद आती है मुक्तागिरि की, कि जब आचार्य हम लोगों को मूलाचार पढ़ाते थे और एक एक तपस्या, आज ऐसा करके आओ कल ऐसा करके आना, और खुद उन्होंने, मैं उस समय नहीं था सन 91-92 में, 9 तप उपवास किए थे, निर्जल उपवास, और 10वें दिन क्या लिया था, मूंग की दाल का 2 अंजुली पानी और वापस लौट आए थे। आज भी ऐसी तपस्या करने वाले साधक हैं, उनको देख करके ही अपनी आंखें तृप्त हो जाना चाहिए और अपना जीवन भी उस तपस्या की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ऐसी भावना के साथ कि हम सब लोग बिना डरे और इस तपस्या को, जो भगवान के द्वारा कही गई तपस्या है, जो महान आत्माओं ने जिस तपस्या को करके और अपने को महान बनाया है, ऐसी तपस्या को सच्ची श्रद्धा के साथ अंगीकार करेंगे, ऐसी भावना के साथ। बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। शाश्वत सुख दर्शक यज्ञनाथ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। शिव के निष्कंटक पथ में निष्कंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तिल पण करते हो।
परमेष्टी भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की, उत्तम तप धर्म की, समय में ही जब इच्छाएं बलवती होती हैं तब मालूम नहीं किन किन वस्तुओं की आकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं। उस समय वह वस्तु मिलेगी या नहीं कोई विचार नहीं किया जाता, बिना विचार किए ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। सम्राट के मन में एक दिन विचार आया कि आम खाना है। माली को बुला करके कहा गया कि पके आम चाहिए। बनमाली ने कहा, राजन अभी तो देर है, ये चैत्र मास चल रहा है, अभी कहां पके आम मिलेंगे आपके लिए। अभी तो हरे भरे आम हैं, पके नहीं हैं, एक डेढ़ महीना का और इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपके लिए इच्छा की पूर्ति हो सकती है। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, आम तो चाहिए ही। माली ने कहा तब फिर तीन दिन का समय दिया जाए, तीन दिन का समय मिल गया, वन माली वन में गया, बगीचे में जाकर के आम के पेड़ पर हरे हरे आम लटक रहे थे, उसमें से कुछ आम उसने तोड़े और तोड़ करके घर लाया और ला करके उसने उन्हें पलाश के पत्तों में ढक करके रख दिया। न प्रकाश न बाहर का प्रताप, आंतरिक ऊर्जा उसमें पैदा हो रही थी और तीन दिन तक वो आम पलाश के पत्तों से ढके रहे। तीसरे दिन निकाल करके देखा तो वे पक चुके थे। वनमाली ने एक थाली में वे पके पके आम रखे और दरबार में पहुंच गया, राजन ये आपकी इच्छा पूर्ति, लीजिए ये आम आ गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये समय नहीं था पके आम का, फिर कैसे पके आम आ गए होंगे, बताओ कैसे लाए, तुम कहां से लाए। राजन कुछ नहीं, ये चमत्कार है, ये हमारी शक्ति का चमत्कार है, हमारी ऊर्जा का चमत्कार है। बोले क्या किया तुमने, हरे हरे कच्चे कच्चे कठोर खट्टे आम तोड़ करके लाया था, पलाश के पत्तों में ढक दिया, इतनी ऊर्जा और ऊष्मा उनको मिली कि वो पक गए और तीन दिन में ही पक करके आ गए। जो समय पर पकते तो डेढ़ महीने बाद पकते, उन्हें समय से पहले ही तीन दिन में पका करके खाने के योग बना लेगा। और यहां से ही एक सूत्र का उदय होगा, तपसा निर्जरा च। ये ऊष्मा ये तप की है, तपस्याण के माध्यम से हम उन कर्मों को निर्जीर्ण कर देते हैं जिन कर्मों की स्थिति अभी योग नहीं है, उदय के योग नहीं है, वे कर्म भी हमारी तपश्चरण के माध्यम से निर्जीर्ण हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, फल से रस से रहित हो जाते हैं। वो खट्टे आम, वो हरे आम, वो कठोर आम क्या बदल गया उनमें, उनका रंग बदल गया, हरे से पीला हो गया, उनका स्वाद बदल गया, खट्टे से मीठा हो गया, उनका स्पर्श बदल गया, कड़े से मुलायम हो गया, नरम हो गया, उनकी गंध बदल गई, खटास की जगह मिठास की गंध आने लगी। ये स्पर्श में, रस में, गंध में ये परिवर्तन कहां से आ गया, ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि इन सब में परिवर्तन आ गया। एकमात्र ऊष्मा, एकमात्र ऊर्जा जो कि सबको बदलने में सक्षम है। हमारे साथ में भी ऐसा ही करिश्मा है, हमारे पास में भी ऐसी शक्ति है, ऐसा जादू है। यदि हम चाहें तो अपने किए हुए पूर्वोपार्जित कर्मों के लिए इस तपश्चरण की ऊर्जा के माध्यम से उसे हम समय से पहले ही भोग करके समाप्त कर सकते हैं, निर्जीर्ण कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और अपने आप को निर्मल और शुद्ध बना सकते हैं। एकमात्र तप है, एकमात्र तप की शक्ति है, एकमात्र तप की ऊष्मा और ऊर्जा है। हम दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, यहां कौन होगा जो दोषों से मुक्त नहीं होना चाहता है, सभी चाहते हैं। कर्मों से मुक्त होना सब चाहते हैं, लेकिन कर्म से मुक्ति मिलेगी कैसे, कर्म से मुक्ति का साधन क्या है, इसको भी तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बिना इसके संभव नहीं है कि हमें मुक्ति मिल सके, हम निर्दोष हो सके, निर्मल हो सके। हमें दोषों से मुक्त होना है तो तप का सहारा लेना पड़ेगा। तप की बात कहते हैं तो डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं। तप के नाम पर तो शरीर कांपने लगता है, आत्मा कांप जाती है कि कौन सी बात कर रहे हैं आप इस कलयुग में। ध्यान रखना, जो तप से डरते हैं उन्हें क्या ताप से डर नहीं लगता? उन्हें संसार के ताप से कोई डर नहीं है, संसार के संताप से कोई भय नहीं है, और तप से डर लग रहा है। तप एक ऐसी अग्नि है जिसमें अपनी कलुषित आत्मा को डाल देने से आत्मा की कलुषता जल करके नष्ट हो जाती है और आत्मा वह निर्मल तत्व प्राप्त हो जाता है। बिना अग्नि परीक्षा दिए कोई निर्मल नहीं बन सकता, बिना परीक्षा दिए कोई निर्दोष नहीं बन सकता है। सीता के लिए कलंक लगा था, दोष लगा था कि रावण के घर रही है। इस दोष से मुक्ति के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए सीता ने क्या किया था? अग्नि परीक्षा दी। वो एक तप था, वो एक साहस का काम था, आंतरिक शक्ति का काम था। इतना विश्वास था कि मैं इस कलंक को मिटा सकती हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं है। और अग्नि परीक्षा देकर के सीता निर्दोष साबित हुई, निर्मल साबित हुई थी। हमें भी यहां अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी, और वो अग्नि परीक्षा तप की होगी। तप से डर करके आप कहीं भी भागो मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना तपस्रण के मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप चाहे जो करते रहिए, बिना तपस्रण के आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो तप करते हैं वही कुछ उपलब्ध कर पाते हैं, वे ही बड़े बन पाते हैं, वे ही उच्च बन पाते हैं, वे ही सबसे ऊपर विराजमान होते हैं, और दूसरा नहीं हो सकता है। मिट्टी जब कुमार खोद करके लाता है तो उसे क्या करता है? मिट्टी को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, मिट्टी को बड़ा बनने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है, मिट्टी को ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ परिसर उपसर्गों को सहन करना पड़ता है, परीक्षाएं देना पड़ती, तब कहीं जाकर के वह मिट्टी ऊपर पहुंचती है, सबके सिर पर विराजमान होती है। कुंभकार मिट्टी लाता है, खोदता है, मिट्टी को पीड़ा होती होगी लेकिन धैर्य रखती है। घर लाने के बाद में उसे कूटता है, छोटी छोटी बना देता है, उसमें पानी डाल देता है, और पानी डाल देने के बाद फिर क्या करता है? उसे पैरों से रौंदता है। फिर भी मिट्टी सब कुछ सहन कर रही है क्योंकि उसे बड़ा बनना है, सबका सिरोमोहर बनना है, लोकाग्र में ऊपर बैठना है, तब तो ये सब सहन करना पड़ेगा। और कुंभकार ने रौंद करके फिर उसे चाक पर चढ़ा दिया। संसार के चक्कर खाने के बाद में भी सब सहन करना पड़ता है, और जब घड़ा बन गया तो फिर कुंभकार उसे ठोकता है, पीटता है, बाहर से पिटाई करता है, फिर भी सहन करते हैं। इससे भी घड़ा बन गया अभी, लेकिन वह घड़ा काम का नहीं है किसी के। यदि उसमें पानी भर दोगे तो बेकार हो जाएगा, दो मिनट भी पानी नहीं ठहर सकता उस घड़े में। कहते हैं कि अभी तुम बड़े नहीं हो गए हो, इसे बड़े बनने के पहले तो तुम्हें अभी अग्नि परीक्षा और देना शेष है। और कुंभकार उसे अग्नि में रख देता है, भट्टी में, हवा में रख देता है, और घड़ा दो चार दिन की अग्नि परीक्षा देने के बाद जब उसमें से निकलता है तो खरा लाल लाल निकलता है। उसे ठोकिए आप, कैसी आवाज करता है, सुरीली आवाज निकलती उस घड़े में से ठोकने के बाद, क्योंकि वो पक चुका है, मजबूत हो चुका है, उसने अग्नि परीक्षा दे दी है। अब उसके ऊपर उसमें पानी भर दीजिए आप, पानी ठंडा होता है। जब आप पानी भर के कुएं से लाते हैं तब कहां रखते हैं घड़े के लिए, पैर में रखते हैं या सिर के ऊपर? सिर पर रखते हो। पानी का घड़ा जब भर करके आता है तो सिर पर रखा जाता है। देखो, घड़े ने इतनी तपस्या की, मिट्टी ने इतनी तपस्या की, तब घड़े का रूप बना, वो घड़ा बन गया तो सिर के ऊपर रखा जाता है। लोग हाथों हाथों लेते हैं क्योंकि उससे ठंडा पानी पीने के लिए मिलता है। घड़ा अच्छा माना जाता है। घड़ा का सहारा लेने वाला आदमी डूब नहीं सकता है, उसे कोई डुबो नहीं सकता है। नदी पार करना हो, जो घड़े का अवलंबन ले ले वो नदी में नहीं डूब सकता है। घड़ा कहता है कि मैंने अग्नि परीक्षा दी है, जल तुम मुझे डुबा नहीं सकते हो। और ध्यान रखना, जो मेरा आश्रय लेता है, जो मेरा सहारा लेता है, तुम उसे भी नहीं डुबा सकते हो, क्योंकि उसने मेरा सहारा लिया है। घड़े के सहारे से लोग नदी तैर करके पार हो जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं, डूबते नहीं हैं, क्योंकि घड़ा डूब नहीं सकता। उसने अग्नि परीक्षा देकर के उच्चता हासिल कर ली है, वो हमेशा ऊपर रहेगा, अब नीचे नहीं जा सकता। ऐसे ही यहां पर यदि हमें सबसे ऊंची बनना हो, सबसे ऊपर जाने की आपकी इच्छा हो, ऊर्ध्वगमन करने की इच्छा हो, लोकाग्र विराजमान होने की एक आकांक्षा हो, तो इस आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए आप अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं, तप करने के लिए तैयार हो जाएं। यदि आप तप नहीं करेंगे, तप से डरेंगे, तो संभव है कि आप उसे पा नहीं सकते हो, उसे प्राप्त नहीं कर सकते जिसे आप पाना चाहते हो। तप बहुत अच्छी चीज है। मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या चाहेंगे? मुक्ति तत्व चर्चा से नहीं, तपाराधना से मिलती है। तत्व चर्चा करने वाले आप कितनी करते होंगे, घंटे, दो घंटे, चार घंटे करते होंगे, और वही वही चर्चा रोज रोज करते होंगे। सरार सिद्धि के देवों को देखिए जाकर के, सौधर्म सभा में सौधर्म इंद्र को देखिए जाकर के, द्वादश अंक के पार्टी होते हैं वो सर्वार सिद्धि के देव। प्रति क्षण नई नई चर्चाएं धर्म की करते रहते, तत्व की नई नई चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं, तेती सागरतम तक तुम ऐसी चर्चाएं करते रहो, लेकिन इस तत्व चर्चा से तुम्हें कभी मुक्ति, संसार से मुक्त नहीं करा सकती तुम्हारी ये तत्व चर्चा। क्योंकि अकेली चर्चा है, अर्चन नहीं है, आराधना नहीं है। यहां तो तपाराधना से मुक्ति मिलती है। जो तप की आराधना करते हैं उनके लिए मुक्ति संभव है, तप से जो भागते हैं उनके लिए मुक्ति कभी मिल नहीं सकती है। तप का असर क्या है? जो आदमी को उच्चता तक ले जाए। लेकिन हमारे आचार्यों ने तप की कुछ विधियां बताई। एक बाहर से तपा जाता है, एक भीतर से तपा जाता है। बिना बाहर भीतर के तपे आदमी शुद्ध नहीं बन सकता है, उसे बाहर से भी तपना पड़ता है और भीतर से भी तपना पड़ता है। इसलिए अंतरंग तप और बहिरंग तप की व्यवस्था की है। बहिरंग तप सब लोग करते हैं, अन्य धर्मावलंबी करते, अन्य दर्शन कार्य भी करते हैं, कहते अन्य मत वाले भी इस तप को कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक तप सबके नहीं होता है। बाह्य तप उस आंतरिक तप का साधन है। यदि सम्यक रीति से बाह्य तप किया जाए तो वह अंतरंग तप का कारण बनता है, और अंतरंग तप होता है
तो आत्म परिणामों में निर्मलता आती है। बाह्य तप क्या है? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विवक्त संयासन, काय क्लेश, ये छह तरह से बाहर में किए जाने वाला यह तपश्चरण है। और भीतर में भी किया जाता है, प्राश्चित, विनय, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, व्योत्सर्ग, ध्यान आदि आदि, ये छह अंतरंग तप बताए गए हैं। ये भीतर में किए जाते हैं, ये अंतरंग में किए जाते हैं। जब तक ये दोनों तप नहीं होंगे तब तक भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन में आना चाहिए लेकिन बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप की सिद्धि हो नहीं सकती। हम चाहते हैं कि हम भीतर भीतर में तपश्चरण कर लेंगे, बाहर के तपश्चरण की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं कि ध्यान रखना, जिसके जीवन में बाहर का तपश्चरण नहीं है, वाह्य तप नहीं है, उसके भीतर में अंतरंग तप कभी हो नहीं सकता। अंतन उनोदर आदि ये तप बाहर में है, इस शरीर को लक्ष्य में रख करके कहे गए हैं, लेकिन ये होंगे तभी जाकर के अंतरंग के तप हो सकते हैं, अन्यथा ये तप हो नहीं सकते हैं। दोनों तप के माध्यम से ही आत्मा को निर्मल अवस्था प्राप्त हो सकती है। आप लोग रोटी बनाते हैं ना, माँ बहने बनाती रोटी, क्या करते रोटी बनाते हैं, तो आप बेलने के बाद में फिर उसे तवे के ऊपर रख देते हैं, एक तरफ से सेंकते हैं, दूसरे तरफ से उसे फिर आग में डाल देते हैं। एक तरफ से रोटी सिकती है और उसे ऐसे ही निकाल ली जाए तो कच्ची रह जाएगी। फिर उसे क्या करते हैं, आप पलट करके दूसरी तरफ से आग में डाल देते हैं, दूसरी तरफ से सेंक लेते हैं। जब रोटी दोनों तरफ से सिकती है तभी अच्छी रोटी, पकी रोटी बनती है। यदि आपने एक तरफ से रोटी सेंकी तो कच्ची होगी, जो भी उस रोटी को खाएगा उसका हाजमा बिगड़ जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर है, ये अंतरंग बहिरंग तप दोनों तरफ से रोटियों की तरह तपाने वाले तप है कि हमें बहिरंग से भी तपना होगा, अंतरंग से भी तपना होगा। जो एक तरफ से तपने की कोशिश में करेगा उसका तप कच्चा माना जाएगा, उस कच्चे तप का उसे अधीन भी हो सकता है, उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं।